नमस्कार भारत, आज है 10 जुलाई दिन रविवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के अंतिम संस्कार के दौरान भड़की हिंसा में 11 लोगों की मौत और 150 से ज्यादा जख्मी।
कई बरसों के दौरान जो एक एब्सेंस है, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो रही है, राजनीतिक तौर पे कश्मीर को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ये उसी का एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है।
डेलस में हुई हिंसा के बाद अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, नस्ल के आधार पर बंटा नहीं है अमरीकी समाज।
I firmly believe that America is not as divided as some have suggested.
मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़, अब तक 12 लोगों की मौत। होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा और विंबलडन की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में संदिग्ध चरमपंथी बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शनिवार को वानी के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस और कश्मीरी लोगों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। वानी के अंतिम संस्कार में दसियों हजार लोग जुटे। वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में लोगों का गुस्सा उबाल पर है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेटो महासचिव येंस स्टॉल्टेनबर्ग ने अफगानिस्तान से मानवाधिकारों, चुनाव सुधारों और भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में और कदम उठाने के लिए कहा है। वारसा में बैठक के बाद नेटो ने कहा है कि उसका अफगानिस्तान सैन्य बलों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम अगले साल भी जारी रहेगा। नेटो महासचिव येंस स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा, मैं मानता हूं कि हमने देखा है कि हम प्रतिबद्ध हैं और अफगानिस्तान में रुके रहने के लिए तैयार हैं, और यही वजह है कि हमने 2016 के बाद भी रुके रहने का फैसला किया है, और इसके बाद हम हालात का जायजा लेंगे और अपनी सैन्य उपस्थिति के बारे में फैसला करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हाल ही में पुलिस गोलीबारी में काले लोगों की मौत और पुलिस पर हमलों के बाद ये कहना सही नहीं है कि अमरीकी समाज नस्लीय आधार पर बटा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कहना ही सही नहीं है कि नस्लीय रिश्ते 1960 के दशक के स्तर पर पहुंच गए हैं। नेटो सम्मेलन के लिए पोलैंड पहुंचे ओबामा ने कहा कि लोगों में गुस्सा और दुख है, लेकिन वो एकजुट भी हैं। पुलिस गोलीबारी में दो काले लोगों की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं डेलस पुलिस का कहना है कि नए खतरे के मद्देनजर शहर भर में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। डेलस पुलिस मुख्यालय के बाहर विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात किए गए हैं। स्पेन के एक पेशेवर बुलफाइटर की सांड से लड़ाई के दौरान मौत हो गई है। यह इस सदी में स्पेन में सांडों की लड़ाई के दौरान किसी मेटाडोर की पहली मौत है। पूर्वी स्पेन के टेरुएल शहर में पेशेवर मेटाडोर 29 वर्षीय विक्टर बैरियो को सांड ने सींग से मार दिया। ये लड़ाई टीवी पर लाइव प्रसारित की जा रही थी। रिपोर्टों के मुताबिक मेटाडोर की जान लेने वाले लोरेंजो नाम के सांड को भी मार दिया जाएगा। जापान में संसद के उच्च सदन की आधी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल होने की उम्मीद है। यदि ऐसा हो पाया तो ये शिंजो आबे के जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन की दिशा में अहम कदम होगा। सीरिया में रूस के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने से 2 रूसी वायु सैनिकों की मौत हो गई है। रूस की सरकारी समाचार सेवा के मुताबिक हेलीकॉप्टर को प्राचीन शहर पलमायरा के नज़दीक जमीन से गोलीबारी में निशाना बनाया गया। इस इलाके में सीरियाई सैन्य बलों और इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 11 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और अलगाववादी नेताओं के घरों की घेरेबंदी कर दी गई है। ताज़ा हालात के लिए सीधे चलते हैं रियाज मसरूर के पास श्रीनगर। रियाज, फिलहाल जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात क्या हैं?
जी अमरीश, ताज़ा हालात तो बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि जुमे की रात को जो कुछ संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था वो अब दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कल दिन भर कोई 200 जगहों पे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ें हुई, तो आज बाकायदगी से पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है। तो एक सन्नाटा सा है, क्योंकि काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो अब 11 पहुंच गई है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें 96 पुलिस और अर्धसैनिक बल भी हैं।
रियाज, सरकार किस तरह से हालात से निपटने के लिए किस स्तर पर प्रयास कर रही है?
जी देखिए, काफी सोशल मीडिया पर भी काफी इस पर कहा जा रहा था कि सरकार इतनी बड़ी स्थिति पर सामने नहीं आ रही थी, कोई बयान नहीं आ रहा था, तो कोई 20 घंटे बाद इस स्थिति के और काफी लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने एक छोटा सा वक्तव्य जारी किया जो उनके प्रवक्ता ने जारी किया, और उसमें उन्होंने मरने वालों के परिवार वालों के साथ जो है उस पर शोक व्यक्त किया और हिंसा को कंडेम किया और कहा कि हिंसा से किसी की जो है भला नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक इशारा साफ साफ दिया, उन्होंने युवकों से अपील करते हुए कहा कि वो लाशों पर राजनीति खेलने वालों के झांसे में ना आए, क्योंकि इससे पहले पूरे दिन जो है विरोधी दल के नेता उमर अब्दुल्ला ट्विटर पर ये लिखते रहे कि बुरहान की मौत से या उसके मारे जाने से कश्मीर का चरमपंथ खत्म नहीं होगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं।
देखिए, जहां तक आज की स्थिति है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही गंभीर किस्म की सिचुएशन जो है हमारे सामने है, और खास तौर से जो साउथ कश्मीर में जिस तरह से 10 लोगों की अभी तक जो किलिंग की रिपोर्ट्स है हमारे पास, उससे और गम गुस्सा बढ़ने का अंदेशा है और सिचुएशन जो है वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि 2010 में जिस तरह से अगर आपको याद होगा कि 135 लोग मारे गए थे और इस किस्म का एक साइकिल चला था, तो अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो शायद हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब सिविलियन किलिंग्स होती है तो उससे गम गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते शामिल हो जाते हैं।
जी शुजात साहब, बीजेपी के नेता राम माधव कहते हैं कि स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा, राज्य में हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है और पीडीपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जब सत्ता में आए थे 2002 में तो उन्होंने हीलिंग टच की बात कही थी। तो अब ये जो स्थिति बन रही है, राज्य में गठबंधन वाली सरकार है, इस स्थिति से किस तरह से सरकार निपटती हुई नजर आ रही है आपको?
सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास है, जो आपने देखा कि जिस तरह से बुरहान की किलिंग के बाद जो लोग सड़कों पे आए और गम गुस्सा पाया जा रहा है, ये तो प्रॉब्लम ये है कि पिछले कई वर्षों के दौरान जो एक एब्सेंस है, यहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो रही है, राजनीतिक तौर पे कश्मीर को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, ये उसी का एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है जो आपको फकत दिख रहा है, सड़कों पे लोग आ रहे हैं। और जिस तरह से किसी ने कहा कि जैसे आपने कोट भी किया कि उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटा जाएगा, ये सख्ती किन लोगों के साथ की जाएगी? सिविलियंस के साथ सख्ती की जाएगी तो आपको पता है कि उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब फिर वायलेंस होगा। तो ये सख्ती की जो बातें हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सख्ती की जो पॉलिसी है इससे कोई फायदा होगा या इससे कोई स्थिति में कोई बदलाव आ जाएगा। जब तक यहाँ पॉलिटिकली इस मसले को एड्रेस ना किया जाए, पॉलिटिकल अप्रोच जब तक ना अपनाया जाए नई दिल्ली की सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि हम कोई इसमें बदलाव देख पाएंगे।
जी, आप पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, उधर उमर अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि बुरहान की मौत के बाद जितने लोगों को सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथ की तरफ वो लाते थे, उससे कहीं ज्यादा लोगों को अपनी कब्र से इस तरफ लाने में वो सक्षम रहेंगे। तो ये किस तरह की पॉलिटिकल अप्रोच है फिर?
हमारी कश्मीर की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि ये जो पॉलिटिशियन है हमारे, ये रोल रिवर्सल करते हैं। जब महबूबा मुफ्ती थी यहाँ पे अपोजिशन में तो शायद वो इसी किस्म के बयान देती थी, आज उमर अब्दुल्ला में अपोजिशन में है वो इस किस्म के बयान देते हैं। कोई पॉजिटिव बयान देने की जरूरत है? ठीक है, हम मानते हैं कि एक बुरहान जो है वो एक आइकन बना हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये देखने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे युवा हैं वो इस ये रास्ता ना अपनाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस किस्म के बयान देने की जरूरत है जिससे और लोग इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे। अब ये सही बात है कि एक आइकन बन जाता है, जैसे पहले मकबूल भट्ट एक आइकन बना था 1984 में, जिसको फांसी पे चढ़ाया गया था वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बना उन लोगों के लिए जिन्होंने 89-90 के आसपास आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की। तो आज की डेट में कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें बेशक बुरहान एक आइकन है, शायद बन सकता है उनके लिए, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है।
ये थे राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी, जिनका कहना है कि राजनीतिक स्तर पर ही इस मसले का हल ढूंढना होगा, लोगों के बीच भरोसा पैदा करना होगा और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका अहम है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात से इनकार किया है कि हाल में पुलिस और काले लोगों के बीच हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरीकी समाज नस्ल के आधार पर मट गया है। राष्ट्रपति ओबामा ने वॉरसॉ में नेटो की एक बैठक के दौरान ये बातें कहीं। गुरुवार को एक काले व्यक्ति मिकाह जॉनसन ने डैलस में एक प्रदर्शन के दौरान 5 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बीच डैलस की पुलिस ने खतरे के मद्देनजर अपने मुख्यालय के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका में काले लोगों की हत्याओं को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इसी बीच डैलस की पुलिस ने नए खतरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। डैलस पुलिस मुख्यालय के बाहर विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात किए गए हैं। गुरुवार को डैलस में पुलिस के हाथों काले लोगों की हत्याओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई गोलीबारी में 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 7 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद कहा जाने लगा है कि अमरीकी समाज रंग भेद के आधार पर बटा हुआ सा है। हालांकि राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि अमरीकी समाज बटा हुआ नहीं है और एकजुट है। नेटो सम्मेलन में शामिल होने पोलैंड गए राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि अमरीका 60 के दशक में लौट रहा है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा,
I firmly believe that America is not as divided as some have suggested.
मेरा विश्वास है कि अमरीकी समाज इस तरह बटा हुआ नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। सभी नस्लों और पृष्ठभूमि के अमरीकी पुलिस पर हमले से गुस्से में हैं, चाहे ये डैलस में हो या कहीं और। इसमें प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं और वो परिजन भी जिन्हें पुलिस के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। वे कह रहे हैं कि पुलिस पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। इसे लेकर कोई विभाजन नहीं है। यही नहीं, सभी नस्लों और पृष्ठभूमियों के अमरीकी काले लोगों की हत्याओं और हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में अफ्रीकी अमरीकी और लातिन अमरीकियों के साथ भेदभाव की समस्या को लेकर भी दुख और गुस्से में हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि डैलस इस त्रासदी से उबर जाएगा।
It touched the soul of the nation.
जब कातिल की गोलियों ने डैलस के पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया तो उन्होंने इस देश की आत्मा को भी छलनी किया। जो मारे गए और घायल हुए वे उन लोगों की सुरक्षा कर रहे थे जो रंग भेद और अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा मानना है कि डैलस पुलिस बल देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है और ये अतुलनीय रूप से विविध शहर इस विभाजन को खत्म करने में कामयाब होगा। पूर्व सैनिक मिकाह जॉनसन ने गुरुवार को डैलस में 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बाद में सुरक्षा बलों ने एक विस्फोट में जॉनसन को मार दिया था। जॉनसन का कहना था कि वो काले लोगों की हत्याओं से गुस्से में था और गोरे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना चाहता था। इस सप्ताह पुलिस गोलीबारी में 2 काले लोगों की हत्या के बाद अमरीका में अफ्रीकी अमरीकी समाज गुस्से में है और देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से आधा राज्य प्रभावित है और सीहोर, रायसेन, बैतूल जैसे जिले बाढ़ में डूब गए हैं। इस आपदा में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। सीधे चलते हैं भोपाल अपने सहयोगी सुरय नियाजी के पास। जी सुरय, क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
देखिए, बारिश का जो दौर चल रहा था भोपाल में, जरूर बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन बाकी जो भोपाल से लगे हुए इलाके हैं वो रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर जैसी जगहों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। और आज जो है रविवार के दिन भी जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। बहुत से ऐसे शहर हैं प्रदेश के जो पूरी तरह से कट गए हैं एक दूसरे से। हरदा जो है खासतौर पर, वहां पर भारी बारिश हुई है। उसके अलावा मंडला है जहां पर 75 सेंटीमीटर बारिश अभी 24 घंटे में दर्ज की गई है। तो ये ऐसे शहर हैं जहां पे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। और अभी तक 5,000 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है जो अलग अलग जगहों में फंसे हुए थे। खास बात की रही कल भोपाल में भारी बारिश हमने देखी थी और जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से डूबे रहे। तो राजधानी में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और ये पहला मौका है 1973 के बाद जब इतनी ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में हुई है। वहीं सीहोर जो है वहां पर भी नाव चली हैं, वहां पर भी लोगों को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई लोग फंसे हुए थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ज्यादातर इलाके जो है, मालवा को छोड़ दें वहां पर बारिश उतनी नहीं हुई है, तो लेकिन ज्यादातर इलाकों में बारिश बहुत तेज हो रही है।
प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, सेना किस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है?
देखिए सेना जो थी, जो रीवा और सतना इलाके जो थे वहां पर सेना को बुलाया गया था जब हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जो है अब कल मुख्यमंत्री स्वयं जो थे भोपाल में कई इलाकों में गए जहां पर भारी बारिश हुई थी और जहां पर लोग डूबे हुए थे। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि पूरे टाइम 24 घंटे पूरे 51 जिलों में उन्होंने कंट्रोल रूम सेट कर दिए हैं। उसके हमने देखा कि रात भर जो है भोपाल में नगर निगम पूरी तरह से काम कर रहा है और कई लोगों को उन्होंने बचाया है जहां से भी खबर आ रही थी। तो अभी जो है पूरी जो काम है इसका मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथ में लेकर रखा है और वो नजर बनाए हुए हैं। जहां पर भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वो कलेक्टर को हिदायत दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कंट्रोल में करें सिचुएशन, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको रिलीफ कैंप में लाया जा सके।
जी सुरेह नियाजी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि सामान्य हालात बहाल करने के नाम पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अप्सपा के तहत अनिश्चित काल के लिए सेना की तैनाती हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का मजाक उड़ाना होगा। अप्सपा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर और भारत प्रशासित कश्मीर में लागू है, जहां लोग इसका विरोध करते आए हैं। अप्सपा को हटाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला करीब 16 सालों से अनशन पर बैठी हैं। दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुनिए।
देश के पूर्वोत्तर राज्यों खासकर मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। अभी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के तहत घोषित असान क्षेत्रों में सेना उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि अपराध अदालतें अशांत घोषित इलाकों में सशस्त्र बलों द्वारा कथित ज्यादती के मामलों की सुनवाई कर सकती है। दरअसल इस कानून के तहत सेना को प्राप्त विशेष अधिकार और इसके तहत होने वाली कार्रवाई को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक स्तर पर विरोध सामने आता रहा है। मानव अधिकार की पैरवी कर रही इरोम शर्मिला मणिपुर में इस कानून को हटाने के लिए पिछले 16 वर्षों से अनशन पर बैठी हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा टिप्पणी के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून को लेकर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। ह्यूमन राइट अलर्ट के कार्यकारी निदेशक बबलू लोयटोंगबम कहते हैं,
अभी जो सुप्रीम कोर्ट का राय निकला है उसने हमको बहुत एनकरेज किया है और हम लोग इसको वेलकम करता है इसको। तो हमारा मांग सुप्रीम कोर्ट में ये है कि SIT बना के इनका जो जिसपे प्रेमाफिसी केस एस्टेब्लिश किया है उसके ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 11 सितंबर 1958 को बना था और तब से लेकर आज तक यानी पिछले करीब 57 वर्षों से ये कानून पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में लागू रहा है। इसके अलावा कश्मीर में भी सशस्त्र गुटों की बढ़ती गतिविधियों के आधार पर पिछले 25 वर्षों से इस कानून का एक संस्करण लागू है। इस छोटे से कानून में 7 धाराएं हैं और इसमें धारा 4 के अनुसार घोषित अशांत क्षेत्र में एक जवान को छोड़कर सशस्त्र बलों का कोई भी अधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकता है। इसके अलावा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मणिपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की सह प्राध्यापक डॉक्टर प्रोफेसर विजय लक्ष्मी बरारा ने BBC से कहा,
लोग बहुत परेशान थे, हिबिस्कॉपस पिटीशन हमेशा डलते थे, लोग मिसिंग हो जाते थे और अभी भी काफी फैमिलीज हैं हु आर वंडरिंग कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मरे कि जिंदा है, कि किसके पास है, कहाँ गए। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी इससे हमारी जो स्टेट थी मणिपुर इतनी वायलेंट हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 1987 से कथित तौर पर सशस्त्र बलों की गोली से जान गंवाने वालों के परिवार के संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। जबकि कोर्ट ने मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के 1500 मामलों की जांच विशेष जांच दल से कराने के सवाल पर अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले को जहां केंद्र और सेना के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं मानव अधिकार की लड़ाई लड़ रहे उन तमाम संगठनों को इससे आगे काफी हिम्मत मिलने वाली है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। भाजपा जहां रैलियां करके छोटे दलों को अपने साथ करने की कोशिशों में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव बार बार अपने मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को सुधरने की नसीहत दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को मऊ जिले में भारतीय समता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
चुनावी रणनीति को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह महज एक हफ्ते में दो छोटे दलों के कार्यक्रमों में शामिल हुए और इन दलों से उन्होंने गठबंधन की रूपरेखा तय की। पहले कथित तौर पर अपना दल के कार्यक्रम में और शनिवार को मऊ जिले में भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में। दोनों ही दलों की पहचान जाति विशेष की पार्टियों के तौर पर होती है। जहां अपना दल कुर्मी समुदाय की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, वहीं भारतीय समाज पार्टी राजभर समुदाय की पार्टी के तौर पर। राजभर समुदाय का पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक तौर पर काफी प्रभाव है। जानकारों का कहना है कि भाजपा पूरी तरह से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति बना रही है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
बीजेपी आसाम से सबक भी ली है और आसाम के नतीजों से डरी भी है। आसाम से सबक उसने लिया कि वहां बोडोलैंड और वहां असम गण परिषद से समझौता किया और सरकार बना लिया। तो ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि जो भी छोटे छोटे दल हैं, अगर उनसे जाए तो हमारे पास एक वोट बैंक जाएगा। यूपी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हालांकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जाति का जो समीकरण है लोकसभा में जिस तरह टूटा, उस तरह वो यूपी में अब उतना कठोर नहीं रह गया। अब क्या है, चार सेगमेंट वोट बैंक के बने हैं, माइनॉरिटी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और फॉरवर्ड। बीजेपी और बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों से बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं और अपने यहाँ लीडर्स को नहीं उभार रहे हैं।
जहाँ तक अपना दल के साथ गठबंधन की बात है, तो आधिकारिक तौर पर अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर चुकी है। यही नहीं, बीबीसी के साथ बातचीत में पिछले दिनों बनारस में हुए सम्मेलन को भी अपना दल का सम्मेलन मानने से उन्होंने इंकार कर दिया।
नहीं, हमारी रैली तो हमारी डॉक्टर पटेल साहब की जयंती इलाहाबाद में हुई थी, वो अपना दल की रैली कहाँ थी, वो तो भाजपा की रैली थी। वही अपना दल के संस्थापक की जयंती में भाजपा के लोग क्या करने आए थे।
भाजपा अपना दल से निष्कासित अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाकर उन्हीं के जरिए पटेल यानी कुर्मी समुदाय के वोटों पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने कल आनन फानन में अपने विधान परिषद सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। बैठक में सपा मुखिया मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बताया गया कि मुलायम सिंह यादव ने नेताओं को एक बार फिर ये सीख दी कि सपा नेता गैरकानूनी गतिविधियों से बाज नहीं आए तो 2017 का चुनाव हाथ से निकल जाएगा, लेकिन पार्टी ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
सर से कहीं नहीं, जो प्रेस में आ जाता है ये अंदर नहीं होता। ये नेताजी ने कहा कि समाजवादी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चुनाव आ रहा, हमारे ऊपर कई तरह के हमले होने वाले हैं, तो लोग अपने निजी काम को छोड़ दें। अगर कोई निजी काम में लगे रहते हैं तो वो पार्टी का ज्यादा काम करे, लोगों के बीच में ज्यादा चाहे। तो ये पॉजिटिव तरीके से कहा। अब वो प्रेस है, किसी तरह से कहीं से आधी अधूरी खबर ली है।
हालांकि मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यकर्ताओं को ये सीख अक्सर देते रहते हैं और दो दिन पहले भी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भी दी थी। बहरहाल, जानकारों का कहना है कि ये नेताजी का अपना तरीका है, क्योंकि यदि इस डांट में गंभीरता होती तो 4 साल में इसका असर जरूर दिखा होता। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब उर्दू अखबारों की समीक्षा सुनिए अशोक कुमार से।
सऊदी शहर जेद्दा और मदीना में पिछले दिनों हुए चरमपंथी हमले पाकिस्तानी उर्दू मीडिया में चर्चा का बड़ा विषय हैं। रोजनामा एक्सप्रेस का संपादकीय है, सऊदी अरब में दहशतगर्दी, मुस्लिम देशों के खिलाफ साजिश। अखबार लिखता है कि इन हमलों का क्या मकसद था और किन संगठनों ने इन्हें अंजाम दिया, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सऊदी अरब में होने वाले हमले अफसोसनाक हैं, खासकर मदीना मस्जिद के पास धमाके से मुस्लिम जगत में चिंता की लहर दौड़ गई। अखबार कहता है कि कई हलकों में कयास लग रहे हैं कि गैर मुस्लिम ताकतें इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी संगठनों को एक खास योजना के तहत बढ़ावा दे रही हैं ताकि मुसलमान देशों को लड़ाई के बिना ही तबाह किया जा सके। इराक, सीरिया और यमन के हालात का हवाला देते हुए अखबार लिखता है कि इसी साजिश के तहत मुस्लिम देशों में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। उधर नवाए वक्त लिखता है कि इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान और मुसलमानों के लिए पवित्र सऊदी अरब की धरती इस्लामिक स्टेट के खास तौर से निशाने पर हैं। अखबार लिखता है कि अगर दहशतगर्द संगठनों ने रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों का खून बहाया है तो उनकी कार्रवाइयों का इस्लाम से कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं दैनिक दुनिया मुसलमान देशों को अपनी आंतरिक और विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करने की सलाह देता है। दूसरी तरफ जंग ने भारत प्रशासित कश्मीर में ईद के दिन अलगाववादी नेताओं को नजरबंद करने पर पाकिस्तान की आपत्तियों को अपने संपादकीय में उठाया है। अखबार लिखता है कि ईद के मौके पर तो गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों को भी अपने परिवारों से मिलने दिया जाता है, लेकिन भारतीय अधिकारियों की संगदिली देखिए कि ईद के मौके पर कश्मीरी नेताओं की आजादी छीन ली जाती है ताकि वो आम लोगों से न मिल सकें।
ये थे अशोक कुमार, और अब विंबलडन की खबरें सुनिए अपूर्व कृष्ण से।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। कल महिलाओं के फाइनल में मुकाबला हो रहा था सरीना विलियम्स और एंजेलिक कर्बर के बीच, मगर चर्चा हो रही थी एक और खिलाड़ी की, जर्मनी की पूर्व खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ, और ये बाजी नाम रही सरीना विलियम्स के। सरीना ने आखिरकार उस मंजिल को छू लिया जिसकी कोशिश वो पिछले एक साल से कर रही थी। उन्होंने स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विंबलडन फाइनल में इस बार 34 वर्षीय सरीना के सामने फिर से थी चौथी सीड 28 वर्षीय एंजेलिक कर्बर। पहला सेट टाई ब्रेक में जाता दिखाई दे रहा था और दोनों में से कोई खिलाड़ी दूसरे की सर्विस नहीं ब्रेक कर पा रहा था। मैच 5-6 पर था जब कर्बर ने कुछ गलतियां की और सरीना ने उनका लाभ उठाकर सर्विस ब्रेक कर दी और इसके बाद अपनी सर्विस पर अगला गेम और सेट जीत लिया। दूसरे सेट में मुकाबला 3-3 से बराबरी पर था जब कर्बर को सरीना की सर्विस ब्रेक करने का मौका मिला, मगर सरीना ने न केवल ये गेम बचाया बल्कि कर्बर की अगली सर्विस ब्रेक की और इसके बाद अपनी सर्विस पर गेम, सेट और मैच अपनी झोली में डालकर स्टेफी ग्राफ के रिकॉर्ड की बराबरी कर डाली। मैच के बाद सरीना ने बताया कि ये सफर कैसा रहा।
It was definitely tough. I came close for the last 3 grand slams. I wasn't able to pull through.
ये निश्चित रूप से मुश्किल था। मैं पिछले 3 ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में इसके करीब आई मगर नाकाम रही, मगर इस बार विंबलडन में आकर मैंने तय किया कि मैं बिना किसी दबाव के खेलूंगी और मुझे लगा कि मुझे जीतना ही है, मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरीना विलियम्स के शब्द। सरीना की कामयाबी विंबलडन में इस बार यहीं तक सीमित नहीं रही, वे डबल्स मुकाबलों में भी चैंपियन बनी। सरीना और उनकी बड़ी बहन वीनस विलियम्स ने कल फाइनल में हंगरी की टाइमे बाबोश और कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्वेदवा को एक जबरदस्त मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराकर इस बार का महिला डबल्स का खिताब जीत लिया। डबल्स में यह विलियम्स बहनों का 6ठा विंबलडन खिताब है और ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में 14वां। वहीं पुरुषों के डबल्स में इस बार चैंपियन बने पहली सीड के फ्रांस के खिलाड़ी निकोला माहू और पीए ह्यूअर्ब। अब आज विंबलडन में पुरुषों के फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे और कनाडा के मिलोस राउनिज का मुकाबला होगा। इस बार पहली दफा ऐसा होगा जब उनके सामने ना तो जोकोविच हैं ना ही रोजर फेडरर, और जो खिलाड़ी उनके सामने है उसका ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल है। राउनिज अगर मरे को बात देते हैं तो वो तो बड़ी बात होगी ही, मगर उन्होंने फाइनल में पहुंचकर ही अपने देश कनाडा के लिए एक कीर्तिमान कायम कर दिया है। वो कनाडा के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो किसी भी ग्रैंड स्लैम मुकाबले के फाइनल तक पहुंचा है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में संदिग्ध चरमपंथी बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत के बाद हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने अफगानिस्तान से मानवाधिकारों, चुनाव सुधारों और भ्रष्टाचार से निपटने की दिशा में और प्रगति करने के लिए कहा है। वारसा में बैठक के बाद नेटो ने कहा है कि उसका अफगानिस्तान सैन्य बलों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम अगले साल भी जारी रहेगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हाल ही में पुलिस गोलीबारी में काले लोगों की मौत और पुलिस पर हमलों के बाद ये कहना सही नहीं है कि अमरीकी समाज नस्लीय आधार पर बटा हुआ है। डैलस पुलिस का कहना है कि नए खतरे के मद्देनजर शहर भर में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।